ओंकार के ध्येय रूप का वर्णन करने के बाद फिर उसके ज्ञेय रूप को बतला रहे थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इनका अकार उकार मकार और अर्धमात्रा के साथ तादात्म्य बतलाया। आगे कहते हैं मात्रा मात्रा प्रतिमात्रा गता सम्यक समस्तान पिपादान जयतीति स्वयं प्रकाश स्वयं ब्रह्म भवती इत्येष सिद्धिकरये तस्माद् ध्यानादौ प्रयुज्यते सर्वकरणोपसंहारत्वाद् धार्यधारणाद् ब्रह्मतुरीयम्। मात्रा मात्राः अकारम उकारम मकार अर्धमात्रा ये प्रत्येक जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ एक हो करके सम्यक समस्तान पिपादा जैसे शब्द में मात्रा होती है उसी प्रकार से जीव के पाद हैं। पाद का पहले भी तात्पर्य बतलाया था जिससे ज्ञान होवे। प्राचीन काल में और अभी भी गांवों में कोई चोर चुरा के भागता है तो कच्ची सड़कें होती हैं, उसके पैरों की छाप रह जाती है। उस पैरों की छाप को देखते हुए उसके साथ चलते हुए अंततो गत्वा वह पकड़ लिया जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध दृष्टांत है भगवान श्री कृष्ण का। द्वारका के अंदर जब भगवान रहते थे तो उस कुल का ही सत्राजीत था। उसने सूर्य की उपासना करके एक दिव्य मणि प्राप्त की। वो मणि सूर्य की कृपा से प्राप्त हुई और सूर्य की तरह ही अत्यंत चमक वाली थी। उसको स्यमंतक मणि कहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि संभवतः वह स्यमंतक मणि ही कोहिनूर है, जो भी हो गए। जब वह उस मणि को पहन के आ रहा था तो भगवान ने उसको समझाया, ये मणि जिसके पास रहती है जो उसको धारण करता है उसको नुकसान पहुंचता है। कोहिनूर में ये देखा ही गया है, जिस जिस के पास गई उस उसका राज्य समाप्त हुआ। चाहे इस चीज को मान करके अथवा न मान करके, जब यह अंग्रेजों के हाथ में गई तो उन्होंने उसके दो टुकड़े कर दिए। एक मणि नहीं रखी, इसलिए तू इसको इस प्रकार पहन के घूम मत, इसको राज्य के तिजोरियों में बंद करवा दे, तुम्हारी चीज रहेगी, तुम जब चाहो तब ले लेना। परंतु सत्राजित के बात समझ में आई नहीं, उसने कहा देखो कृष्ण के पास इतनी चीजें होने पर भी इसका लोभ खत्म नहीं हुआ, मेरे को एक मणि मिली है उसको भी दबा लेना चाहता है। उसने नहीं दी, भगवान ने कहा जो इसकी मर्जी। थोड़े दिनों के बाद वो जंगल में गया हुआ था, वापस आया नहीं। जब तीन चार दिन तक नहीं आया, लोगों ने पता लगाने का प्रयत्न किया तो वो एक जगह मरा हुआ मिला। अब जैसी लोगों की आदत है बातें बनाने की, लोग कहने लगे हो न हो कृष्ण को इसके मणि की इच्छा थी, इसलिए कृष्ण ने ही इसको मरवा दिया या मार दिया और मणि ले ली। अब बात जब चलती है तो चलते चलते उस आदमी को भी सुनाई दे ही जाती है, तो श्री कृष्ण ने भी सुना। उन्होंने विचार किया कि भाई कलंक को धोना ही ठीक है, इसलिए जहां सत्राजित मरा हुआ पाया गया था वहां गए, तो वहां से उन्होंने देखा ध्यान दे करके कि किसी शेर के पैर बने हुए हैं जो दूर जा रहे हैं, तो पैरों को देख करके उन्होंने समझ लिया कि हो सकता है शेर ने मारा हो, तो पैरों को देख के ही निश्चय किया ना। पैर माने पैर तो वहां थे नहीं शेर के, पैर के चिन्ह थे उन्हीं को पैर कहा जाता है। तो जैसे उस चिन्ह से उन्होंने शेर को पाया, परंतु जब शेर को पाया तो वो भी मरा हुआ था, मणि भी वहां नहीं थी। भगवान अपने साथ कुछ लोगों को ले गए थे। अब फिर चारों तरफ ध्यान से देखा तो वहां से एक भालू के पैर आगे गए हुए थे, पैर माने पैर के चिन्ह। उस चिन्ह को लेकर के भगवान फिर चले, तो अंत में वो पैर एक गुफा में गए हुए थे, अंधेरी गुफा थी। अब अंधेरी गुफा के अंदर जब वह जाने लगे तो थोड़ी दूर तक तो जो उनके साथ में थे वो गए, लेकिन फिर सबको डर लगा। सबने कहा हम तो आगे नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा फिर ऐसा करो, तुम लोग गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, गुफा के मुंह पर, मैं जाकर के पता लगा करके वापस आऊं, तब तक यहीं खड़े रहना। श्री कृष्ण अंदर चले गए। जाते जाते काफी दूर जब गए तब उनको प्रकाश नजर आया। वहां पहुंचे तो देखते हैं एक लड़की उसी स्यमंतक मणि से खेल रही है, उसके झूले पर लटक रही है। सोच ही रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, तब तक एक बड़ा जबरदस्त भालू आया, श्री कृष्ण से लड़ पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के शरीर से भी खून की धारा निकली, उस भालू के शरीर से भी खून की धारा निकली। वो खून की धारा बहती हुई गुफा के मुंह में आई। अब जो वहां खड़े हुए थे सब कहने लगे, लगता है कृष्ण को किसी जंगली जानवर ने मार दिया, अपने भगो यहां से, नहीं तो अपने को भी निकल के मारेगा। थोड़े से पत्थर भी रख दो जिसमें वो जल्दी आवे तो अंदर बाहर नहीं आवे। वहां से भाग गया, आकर के चारों तरफ कह दिया कि कृष्ण मारे गए। युद्ध करते करते अंत में वो भालू विचार करने लगा कि ये कौन है जो मेरे से इतना जबरदस्त युद्ध करता है। उसने जैसे ही ध्यान करके देखा तो उसको पता लगा कि ये तो मेरे इष्ट देव हैं, क्योंकि वो भालू सामान्य भालू नहीं, जांबवान था। उसने पहचान लिया कि जो राम थे वही कृष्ण रूप में आए हुए हैं। प्रार्थना करने लगा, मेरे से बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा भाई बिना जान के किया तो इसमें कोई बात नहीं। उसने भगवान को मणि भी दे दी और लड़की भी दे दी। भगवान आए तो दरवाजे पर कोई नहीं था, मुंह के ऊपर पत्थर थे वो हटाए, वहां कोई नहीं था। जब कृष्ण वापस पहुंचे तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां तो बात हो गई थी कि खत्म हो गए हैं। सत्राजित को बुला करके उन्होंने कहा ये तुम्हारी मणि लो, आगे संभाल के रखना, मेरा कलंक हटाओ, परंतु रखोगे ये तुम्हारे नुकसान का कारण होगी। अब तो वो भी समझ गया था। तो इस प्रकार से भगवान ने पैरों को देख करके ही यह सारा पता लगाया। ठीक इसी प्रकार से पैरों के द्वारा ही हम लोग भी पता लगाते हैं। आत्ममणि इसका पता किससे लगे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो तीन पैर हैं इनका विचार करने से यह मणि मिलती है। सूर्य की कृपा से सत्राजित को मणि तो मिली, परंतु वो मणि तब तक सुरक्षित पूर्ण रूप से नहीं हो सकती जब तक राज्य कोष में न रख दी जाए। इसी प्रकार से ध्यान के द्वारा हम लोगों को निर्विकल्प समाधि में आत्मा की मणि तो मिलती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम्, तदा तस्मिन काले निर्विकल्प समाधि जिस समय होती है उस समय स्वरूप की प्राप्ति होती है। परंतु तदा प्राप्ति तो होती है, परंतु जब तक निर्विकल्प समाधि है तब तक प्राप्ति है। वहां से फिर जैसे ही विक्षेप हुआ वैसे ही फिर जगत ऐसा का ऐसा। सर्वदा उसकी प्राप्ति नहीं है। जब तक परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान न हो जाए तब तक वह जो अनुभव हुआ है वो सुरक्षित रहता नहीं, अर्थात व्यवहार के समय फिर हाथ से बिखर जाता है। परंतु शुरू में ये बात समझ में आती नहीं। अब सत्राजित का पुत्र सात्राजिति उसको पहन के घूमने जाता है, शेर के द्वारा वो मारा जाता है। जैसे वहां सत्राजित का पुत्र मारा गया वैसे ही यहां पर भी व्यवहार काल के अंदर जब हम जाते हैं, कल भी बतलाया था ये संसार क्या है, तो गहन विपि ने कल कहा था ना घोर जंगल है। जैसे जंगल के अंदर बाघ भालू इत्यादि रहते हैं वैसे ही यहाँ काम क्रोध लोभ मोहादि अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। अब सत्राजित का पुत्र सात्राजिति उस मणि को लेकर के जब व्यवहार भूमि में जाता है तो जैसे शेर ने उसको मणि का हरण कर लिया उसको खत्म कर दिया उसी प्रकार से ये ज्ञान मणि हरण हो जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है ज्ञान रत्नापहारिणः, ये काम क्रोधादि विकार कैसे हैं तो ज्ञान रत्न को चुरा लेते हैं, ज्ञान रूपी रत्न जिसको हमने समाधि में प्राप्त किया। तस्मात् जाग्रही जाग्रही, वो हरण न कर सकें इसके लिए जग जाओ अर्थात जिसको ध्यान में प्राप्त किया है उसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखने के लिए ज्ञान को प्राप्त करो। जगने का मतलब ही होता है जो चीज तुमको केवल अपनी वासना मात्र से दिख रही है वहां से हट करके जो वास्तविकता है उसको पकड़ लो। जैसे वहां पर शेर ले गया, शेर से भालू ले गया। अलग अलग पैर दिखे ना, वैसे ही यहां पर अलग अलग पैर हैं। जागृत के अंदर हमको सारे पदार्थ दिखते हैं, जागृत के अंदर पदार्थों को देखने के साथ ही यहां पर हमारी अपनी कल्पनाएं भी हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, एक स्त्री शरीर खड़ा है, एकस्याम प्रमदा तनौ। वो स्त्री गोरी है, 5 फुट 4 इंच की है, 60 किलो की है। अब जितने लोग वहां खड़े हैं सबको 60 किलो की 60 किलो की ही दिखेगी, गोरे रंग की गोरे रंग की दिखेगी। जैसी है वैसी दिखेगी। तो ये तो चीज ऐसी है जो सबको एक जैसी दिखती है, पदार्थ जैसा है वैसा सबको दिखेगा, इसमें कोई मतभेद नहीं। अब मतभेद की बात बतलाते हैं। एक वहां पर लड़का खड़ा है, उसको उसमें दिख रही है ये मेरी मां है। एक जवान खड़ा है, उसको दिख रहा है ये मेरी पत्नी है। एक बुढ़ा खड़ा है, उसको दिख रहा है ये मेरी बेटी है। अब देखो, मां कभी बेटी नहीं हो सकती, बेटी कभी मां नहीं हो सकती, पत्नी कभी बेटी नहीं हो सकती। तो यहां पर बेटी पत्नी मां ये तो एक एक को दिख रहा है, परंतु इन तीनों को भी वो 60 किलो की गोरी तो दिख रही है, 5 फुट 3 इंच की ही दिख रही है। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है, परंतु मां है बेटी है या पत्नी है ये एक एक की। अब वहां कुछ औरतें भी खड़ी है, किसी को वो ननद दिख रही है, किसी को देरानी दिख रही है, किसी को जेठानी दिख रही है। अब वो भी एक एक को दिख रही है, जेठानी देरानी नहीं हो सकती, देरानी जेठानी नहीं हो सकती, परंतु एक को जेठानी दिख रही है, एक को देरानी दिख रही है, एक को ननद दिख रही है। अब वहीं पर एक कामुक व्यक्ति खड़ा है, स्त्री बड़ी सुंदर है, उसको हो रहा है कि इसका भोग किया जाए तो बड़ा अच्छा हो। इन लोगों को तो रिश्ते दिख रहे हैं, उन लोगों को उसका सेवन कैसे किया जाए ये दिख रहा है। वहीं पर एक बढ़िया कुत्ता खड़ा है, एल्सीशियन, वो देख रहा है इसकी पिंडली खाए तो बड़ा मजा आवे। कामुक भी भोग की सोच रहा है और वो भी भोग की सोच रहा है, लेकिन दोनों की दृष्टि वहां अलग अलग है। वहीं पर कोई साधक भी खड़ा है, वो सोचता है यहां से दूर हटूं, ये कहीं मेरे वैराग्य को कमजोर न कर देवे, इसलिए उपेक्षा करके वहां से जाना चाहता है, हटना चाहता है। अब 5 फुट 3 इंच गोरापना, 60 किलो वजन, ये तो इन लोगों को भी सबको दिख रहा है, कामुक को भी दिख रहा है, कुत्ते को भी दिख रहा है, उस साधक को भी दिख रहा है। ये जो एक एक को दिख रहा है वो तो उस एक एक की अपनी कल्पना है, ये उसको अपने अपने मन से दिख रहा है। परंतु 5 फुट 3 इंच 60 किलो गोरी जो औरत खड़ी है वो तो सबको एक जैसी दिख रही है ना। तो जागृत के अंदर कुछ चीज तो हमको दिखती है जो वहां पदार्थ है, उसको बनाने वाले हम नहीं हैं, वो तो वहां है। और कुछ चीज दिख रही है जिसको हम अपने मन से बना के देखते हैं। ठीक समझ गए भाई? 7 में तीसरी चीज एक और है, जागृत में बतला रहे हैं। मैं 3.5 हाथ के खाक के पुतले में रहने वाला सर्वव्यापक परमात्मा नहीं हूं। जागृत अवस्था के अंदर हमारा अनुभव क्या है? 3.5 हाथ के पुतले के अंदर बैठा हुआ हूं, कोई संदेह तो नहीं है। क्योंकि यदि अपने को व्यापक समझ लो तो 9:45 बजे यहां से चलने की सोचोगे? कहां जाना है? तुम तो व्यापक हो, सब जगह पहले ही मौजूद हो, यहीं बैठे बैठे दुकान खोल लोगे, वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हो। इसलिए जागृत अवस्था के अंदर, इस शरीर के अंदर हम बैठे हुए हैं तभी जागृत अवस्था है। जागृत का लक्षण करते हुए इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा जहां विषयों का ग्रहण होता है उसका नाम जागृत अवस्था। इंद्रियां शरीर में होंगी, इसलिए शरीर में होंगे तभी इंद्रियों के साथ संबंध हो करके विषयों को देखेंगे। इंद्रियैरर्थोपलब्धि जागरितम्, जागृत का लक्षण किया शास्त्रकारों ने। जागृत अवस्था किसको कहते हैं? इंद्रियों से विषयों को देखो तब जागृत अवस्था है। एक तो बाहर विषय हैं, एक हम अपने मन की वासना से उसके ऊपर कुछ और चढ़ा करके देखते हैं, तीसरा हम इस बात को जानते हैं कि हम इस शरीर में हैं, व्यापक ब्रह्म नहीं हैं। ये जागृत अवस्था। अब अगर जागृत अवस्था ही भगवान ने हमारे लिए बनाई होती तो इसी चीज को जानते होते आगे संदेह की बातें ही नहीं उठती।